दुनिया एक आवाज,
एक दुनिया एक आवाज,
ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज।
आवाज नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए,
आवाज जो नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए, ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज।
नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज की विशेष श्रृंखला चल है तो कल है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है हरित शौचालय, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजय राघवन चार्यार जी। जल है तो कल है, यह कार्यक्रम इंडिया वाटर पोर्टल और वन वर्ल्ड साउथ एशिया के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी समय पर रोजाना 23 मार्च तक आप हमारे कार्यक्रम को सुन सकते हैं। प्रोफेसर विजय राघवन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज की विशेष श्रृंखला जल है तो कल है में।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इकोलॉजिकल सैनिटेशन या इकोसैन क्या है?
इकोलॉजिकल सैनिटेशन एक तकनीक है, कुदरत के बहुत करीब ये तकनीक डेवलप की गई है, और इसमें ये किया जाता है कि मल और मूत्र को अलग अलग करना और मल मूत्र को पानी में ना मिलाकर जमीन में ले जाना। कुदरत ने पानी के सिस्टम्स का डिजाइन इस तरह से नहीं किया कि वो बहुत ज्यादा संख्या में मल या मूत्र को डिजेनरेट या ब्रेक डाउन कर सके, लेकिन हम देखेंगे मिट्टी है, खेत है, उसमें काफ़ी सारी शक्ति है और उसको ज़रूरत भी है इस चीज़ की कि जो मल और मूत्र से जो पौष्टिकता मिलती है वो उसमें चली जाए। तो ये सिंपल बहुत ही सरल तकनीक है कि मल और मूत्र को अलग करना, तो इसको अलग अलग करके फिर कृषि में मल और मूत्र का इस्तेमाल करना, इसको इकोसैन कहते हैं।
तो प्रोफेसर जी, क्या ज़रूरत है कि इस विषय पर बात की जाए?
शहरी स्थिति में हम देखेंगे जो तमाम हमारे नदियां हैं और जल के स्रोत हैं, यमुना नदी ही ले लें दिल्ली के शहर में, तो जो हमारे घरेलू मल है, मूत्र है, वो सारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए यमुना में इसको डिस्चार्ज किया जाता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो औद्योगिक कॉम्प्लेक्सेस हैं उसका वेस्ट भी यमुना में डिस्चार्ज किया जा रहा है। देश की हर नदी का यही हाल है, देश के हर जल स्रोत का हाल हम देखें तो हमारा जो घरेलू मल मूत्र है वो उसमें डिस्चार्ज होने की वजह से तमाम नदियां जो हैं बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं, बहुत प्रदूषण हो चुका है। गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी को लेकर लिया गया है, अब हम यमुना एक्शन प्लान यमुना पे देख रहे हैं, और इतनी कीमती संपदा है जल, जिसके बगैर कि जीवन के बारे में कल्पना करना असंभव है, ऐसे जल स्रोतों का प्रदूषण इतनी बड़ी मात्रा में आधुनिक समाज ने हम लोगों ने किया है, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि प्रदूषित जल का सेवन करके लोगों का स्वास्थ्य इतना बिगड़ रहा है। आम आदमी है दिल्ली के शहर में जो 3-4-5 हज़ार रुपये का जो आमदनी है हर महीने की, उससे आधे से ज़्यादा खर्च जो है उसका अपने स्वास्थ्य पर ही जा रहा है, और इसका डायरेक्ट हम लोग ये कनेक्शन देख सकते हैं कि प्रदूषित पानी के सेवन के वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और ये हम लोग सिर्फ अर्बन सोसाइटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो स्लम्स में भी जो लोग रह रहे हैं उनको प्रदूषित पानी की वजह से उनके स्वास्थ्य पे बहुत ही हानिकारक इफेक्ट हो रहे हैं, और पानी यदि शुद्ध नहीं होगा तो तमाम जो समुदाय हैं, चाहे वो अर्बन कम्युनिटीज़ हों चाहे वो रूरल कम्युनिटीज़ हों, उनके स्वास्थ्य पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, और इसीलिए हमें इकोसैन के बारे में आज बात करने की जरूरत है।
राघवन जी, हमारी जानकारी के अनुसार IIT में वाटरलेस यूरिनल को लेकर भी रिसर्च चल रही है, तो क्या है ये वाटरलेस यूरिनल?
वाटरलेस यूरिनल इकोसैन टेक्नोलॉजी का एक अंग है, जिसमें हम लिक्विड वेस्ट के बारे में, मतलब जो मूत्र है उसके बारे में विशेष ध्यान रखते हैं। इसमें बेसिक तकनीक सिर्फ यही है कि मल और मूत्र को कैसे सेपरेट किया जाए, कैसे अलग अलग रखा जाए, और दो तरह के तकनीक हो सकते हैं। एक तो ये है जैसे स्कूलों में होता है, वाटर यूरिनल्स होते हैं और टॉयलेट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। और यूरिनल्स में यदि पानी का कनेक्शन नहीं हो, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मूत्र जो है लिक्विड होने के वजह से उसको गुरुत्वाकर्षण से ही वो यूरिनल से नीचे अपने पाइप से ड्रेन होके चला जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण से अपने आप जाने के वजह से उसको पंप करना या फ्लश करने के लिए पानी के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। तो हर एक वाटरलेस यूरिनल पर हम औसतन देखें तो कम से कम एक साल में एक वाटरलेस यूरिनल लगाने से कम 50,000 लीटर पानी की बचत हो सकती है। यदि ये घरों में हो तो और भी ज़्यादा बचत हो सकती है, काफ़ी बचत हो सकती है। तो एक वाटरलेस यूरिनल लगाने से यदि 50,000 लीटर फ्रेश वाटर का बचत हो सकता है, तो बहुत बड़ी बचत देश भर हम लोग देखें या दिल्ली शहर में देखें तो काफ़ी हद तक हम लोग जो पानी प्यूरिफाई करके नदियों से निकाल के लोगों तक तो पहुंचा रहे हैं फ्रेश वाटर, उसको फ्लश करने के लिए, वाट यूरिन को फ्लश करने के लिए इस्तेमाल किए बगैर काफ़ी हद तक पानी का बचत हो सकता है। दूसरे वर्जन में जैसे हम लोग कहते हैं कि एक तो वाटरलेस यूरिनल हो गया, दूसरा कहते हैं यूरिन डाइवर्टिंग ड्राई टॉयलेट। मान लीजिए हम लोग एक टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसमें हम चाहते हैं कि यूरिन अलग हो जाए और फीकल मैटर या मल अलग हो जाए, मूत्र अलग हो जाए और मल अलग हो जाए, इस तरह के डिज़ाइंस भी बने हैं। तो हम लोगों ने दोनों पर ही काम किए हैं, वाटरलेस यूरिनल पर भी IIT दिल्ली पर काम हुआ है और यूरिन डाइवर्टिंग ड्राई टॉयलेट्स पर भी काम हुआ है, जिसमें कि पानी का इस्तेमाल दोनों में नहीं होता, ना मल में होता है ना मूत्र में होता है। मल को 3 से 6 महीने तक अलग रख के उसके बाद उसको खेत में इस्तेमाल किया जाता है, और मूत्र को लगभग 1 हफ्ते बाद उसको खेत में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि तुरंत हमें वाटरलेस यूरिनल के लगाते ही हमें 50,000 लीटर औसतन पर यूरिनल एक साल में सेविंग हो जाती है। दूसरा ये है कि जो मल है और मूत्र है उसको हम लोग कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान आमतौर पे कह रहा है कि खेती महंगी होती जा रही है, हर किसान को हम लोग शहर में पूछते हैं, गांव में पूछते हैं, वो कहता है कि क्यों उसने गांव छोड़ा, क्यों शहर आया, वो कहता है कि खेती महंगी हो गई। तो खेती को सस्ता करने के लिए इकोसैन एक बहुत ही उपयुक्त टेक्नोलॉजी है।
तो क्या आपका मानना है कि वाटर हार्वेस्टिंग की तरह यूरिन हार्वेस्टिंग की भी जरूरत है?
ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि करीब 30 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग देश के हर एक विलेज में, लगभग लगभग हर एक विलेज में यूरिन ये इंक्लूडिंग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देश भर में हुआ है, शहरों में भी हुआ है और गांवों में भी हुआ है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में अवेयर हो गए कि पानी जो है एक संपदा जो है ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है और उसका हमें सेविंग करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसी तरह से हम देखें तो हम कहते हैं कि वेस्ट नाम की कोई चीज़ कुदरत में नहीं है, ये सिर्फ जो है ह्यूमन सोसाइटीज में वेस्ट नाम की चीज़ का आविष्कार हम लोगों ने किया है। हम लोग यदि पक्षियों को देखें या पशुओं को देखें तो उनके उनके सिस्टम में, उनके इकोसिस्टम में वेस्ट नाम की चीज़ नहीं होती। एक सिस्टम का वेस्ट दूसरे सिस्टम के लिए इनपुट की तरह से चला जाता है। उसी तरह से हम लोग ह्यूमन सिस्टम में भी देखें तो यूरिन जो एक, जिसे हम मूत्र जिसे एक वेस्ट कहते हैं, तो ये वेस्ट नहीं होके हम इसे कहते हैं कि एक मिसप्लेस्ड रिसोर्स है, ये संपदा है जिसे हम गलत जगह पे डाल रहे हैं। यदि इस संपदा को हम सही जगह ले जाएं, यदि जैसे दिल्ली के आउटर एरियाज़ में, जैसे पेरी अर्बन एरियाज़ में जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर यूरिन यदि कलेक्ट होके किसान के खेत पे पहुँचाया जा सकता है, और आधुनिक तकनीक भी इसमें हमें काफ़ी हद तक इसमें मदद कर सकती है कि हम लोग सेफ स्टैंडर्ड्स के साथ हम लोग यूरिन का इस्तेमाल खेतों में करें। और कई एक्सपेरिमेंट्स दिल्ली में ही नहीं बल्कि बैंगलोर में, त्रिची में, नेशनल सेंटर फॉर बनाना रिसर्च है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज GKV के बैंगलोर है, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, ये 4-5 संस्थाएं ने इकोसैन पर और यूरिन हार्वेस्टिंग पर काफ़ी काम किया है। और हमें ज़रूर लगता है कि जैसे MCD भी कहती है कि वेस्ट का प्रबंधन कैसे हो, मल मूत्र का प्रबंधन कैसे हो, ये MCD के लिए, PWD के लिए, CPWD के लिए बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। आबादी शहरों में बढ़ रही है और ये मल मूत्र का प्रपोर्शन बहुत बढ़ता जा रहा है, और यदि ये एक एंटरप्राइज मोड में, माइक्रो एंटरप्राइज मोड में वेस्ट मैनेजमेंट एक रेवेन्यू जनरेटिंग एंटरप्राइज हो जाए, कि उसमें से किसान कुछ पा रहा है और किसान कुछ पाने के वजह से वो यूरिन के लिए, हो सकता है कि कल के समय में 50 लीटर यूरिन के लिए 10 रुपये लेने देने के लिए तैयार हो, तो हमारा मल मूत्र प्रबंधन का सिस्टम भी और एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि ये वेस्ट वेस्ट ही नहीं बल्कि एक रिसोर्स बन जाए।
इस समय भारत में इकोसैन की तकनीक द्वारा मल प्रबंधन पर सफलताएं कहाँ कहाँ प्राप्त हुई है?
जैसा कि मैंने अभी बताया, नेशनल सेंटर फॉर बनाना रिसर्च त्रिची में है, वहाँ पर इसको बनाना में अप्लाई किया गया है, यूरिन को कलेक्ट किया गया है और केले के पौध में अप्लाई किया गया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसमें मिले हैं। तो इसमें दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, एक तो सैनिटेशन मल मूत्र प्रबंधन का प्रॉब्लम और दूसरा कृषि में जो फर्टिलाइजर की कमी की प्रॉब्लम, दोनों सॉल्व हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज है बैंगलोर में, GKV के, वहाँ पर भी इस पर शोध हुआ है, एक पीएचडी स्टूडेंट ने पीएचडी सबमिट किया है इसके ऊपर और बहुत ही अच्छे परिणाम वहाँ पर भी मिले हैं। यहाँ पर आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर विनोद तारे हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली पे हम लोगों ने कुछ सालों से इस पर काम शुरू किया है।
आम आदमी इस तकनीक को कैसे पा सकता है?
आम आदमी के लिए हम ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि ये तकनीक बहुत ही सरल तकनीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़रूर है कि जहाँ पर हम लोग कन्वेंशनल टॉयलेट यूज़ करते हैं और उसी में मल मूत्र दोनों का चैनल बना हुआ है, उसके जगह पर हमें एक यूरिन डाइवर्टिंग टॉयलेट लगा देनी पड़ेगी जिससे कि मल अलग हो जाए और मूत्र अलग हो जाए, या यदि जिन घरों में और भी ज़्यादा जगह उपलब्ध हो वहाँ पर एक वाटरलेस यूरिनल पैन लगा दिया जाए और उस पर एक सिस्टम लगा दिया जाए। इसमें मेरे ख्याल से हम देखें आम आदमी के लिए बहुत कॉस्टली सिस्टम नहीं है ये, और 400 से 500 रुपए के भीतर में वाटरलेस यूरिनल पैन हर घर में लग सकता है। इंडियन सप्लायर्स भी अवेलेबल हैं, पैन्स भी अवेलेबल हैं, ओडर कंट्रोलिंग ट्रैप्स भी अवेलेबल हैं। थोड़ी सी प्लम्बिंग लाइन में ज़रूर तब्दीली लानी पड़ेगी ताकि वो जो लिक्विड वेस्ट है उसको अलग कर दिया जाए, और इंडिविजुअल हाउसेस में बहुत सरल है। मेरे ख्याल से स्लम्स में भी ये पॉसिबल है, स्लम ड्वेलर्स भी अपना यूरिनल्स जो है वाटरलेस बना दें। पानी की किल्लत तो है ही, पीने के लिए पानी नहीं है तो फ्लश करने के लिए पानी कहाँ से आएगा, तो वाटरलेस यूरिनल स्लम्स में भी प्रमोट हो लोग उसे, और उसे एक रिसोर्स के तरह से एक छोटा रिएक्टर लगा के उसमें से जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम है उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एक छोटे कोऑपरेटिव के तौर पे इसे बेचा भी जा सकता है। तो यूरिन में पॉसिबिलिटी भी ये है कि उसमें उससे एक छोटी सी रेवेन्यू भी जनरेट हो सकती है, उसमें उससे एक छोटा बिजनेस भी चल सकता है।
तो राघवन जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके पास जल संबंधी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप अपने मोबाइल पर टाइप करें जल और अपना प्रश्न लिखें और भेज दें 9811846246 पर। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 9811846246। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट hindi.indiawaterportal.org और edaa.in पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय एक और नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एक दुनिया एक आवाज,
एक दुनिया एक आवाज,
ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज।